डैनियल की पुस्तक तक संख्या 83 लाओदीकियाए एडवेंटवाद की चार पीढ़ियां बढ़ते हुए घृणित कुकृतियों का पर्दाफाश। यहेजकेल का 8वां अध्याय 4 क्रमशः बढ़ती हुई घृणित बातों को प्रस्तुत करता है जो लाओदीकिया एडवेंटिज्म की चार पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1863 के विद्रोह ने हबक्कूक की दो पट्टिकाओं का एक नकली प्रतिरूप उत्पन्न किया, ठीक वैसे ही जैसे हारून ने उसी समय जब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाओं की दो पट्टिकाएं दे रहे थे अपने सोने के बछड़े के साथ ईर्ष्या की एक नकली मूर्ति बना दी थी। जब लाओदीकिय एडवेंटिज्म ने, जैसा विलियम मिलर के स्वप्न में दर्शाया गया था, मूलभूत सत्यों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया, तो पहली पीढ़ी के नेतृत्व ने पहले बाइबल के अधिकार को अस्वीकार करना प्रारंभ किया और फिर भविष्यद्वाणी की आत्मा को भी। विद्रोह इतना बढ़ गया था कि 1888 से ठीक पहले केलॉग का आध्यात्मवाद, सर्वेश्वरवाद, उनके इतिहास में आ पहुंचा। 1885 के विद्रोह के समय यहेजकेल के चित्रों के कक्ष द्वारा दर्शाया गया आत्मवाद इस हद तक पहुंच गया कि मिनियापोलिस के संदेशवाहकों, भविष्यवक्त्री और यहां तक कि पवित्र आत्मा को भी अस्वीकार कर दिया गया।
हमने अपने अनुभव में देखा है कि जब प्रभु पवित्र स्थान के खुले द्वार से अपने लोगों के लिए प्रकाश की किरणें भेजते हैं तो शैतान बहुतों के मनों को भड़काता है, परंतु अंत अभी नहीं आया है। ऐसे लोग होंगे जो प्रकाश का विरोध करेंगे और उन लोगों को दबाएंगे जिन्हें परमेश्वर ने प्रकाश का संप्रेषण करने के लिए अपने माध्यमों के रूप में नियुक्त किया है। आध्यात्मिक बातों को आध्यात्मिक रीति से परखा नहीं जाता। प्रहरियों ने परमेश्वर की प्रकट होती हुई व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चले हैं और स्वर्ग से भेजे गए सच्चे संदेश और संदेशवाहकों का तिरस्कार किया जाता है। इस सभा से ऐसे पुरुष जाएंगे जो सत्य को जानने का दावा करते हैं, जो अपनी आत्माओं पर वे वस्त्र ओढ़ा रहे हैं जो स्वर्ग के करघे पर नहीं बुने गए हैं। यहाँ जो मनोभाव उन्होंने ग्रहण किया है वही उनके साथ जाएगा। मुझे हमारे उद्देश्य का भविष्य सोचकर कंपकंपी होती है। जो लोग यहाँ परमेश्वर द्वारा दिए गए साक्ष्य के आगे नहीं झुकते वे उन भाइयों के विरुद्ध युद्ध करेंगे जिनका परमेश्वर उपयोग कर रहा है। अवसर आने पर वे इसे बहुत कठिन बना देंगे ताकि वे उसी प्रकार के संघर्ष को जिसमें वे अब तक लगे रहे हैं आगे भी बढ़ा और जारी रख सकें। इन लोगों को ये समझ लेने के अवसर मिलेंगे कि वे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। कुछ आश्वस्त हो जाएंगे, अन्य अपने ही मनोभाव को दृढ़ता से पकड़े रहेंगे। वे अपने अहं को मरने नहीं देंगे और प्रभु यीशु को अपने हृदयों में आने नहीं देंगे। वे अधिकाधिक धोखे में पड़ते जाएंगे यहाँ तक कि वे सत्य और धर्म का विवेक न कर सकें। वे किसी अन्य आत्मा के अधीन होकर कार्य पर ऐसा सांचा थोपने का प्रयत्न करेंगे जिसे परमेश्वर स्वीकृत नहीं करेगा, और वे मनुष्यों के मनों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करते हुए शैतान के चरित्र लक्षणों को व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार परमेश्वर के कार्य और उद्देश्य को नियंत्रित करेंगे। यदि हमारे भाइयों ने इस बैठक में उपवास और प्रार्थना की होती और परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को दीन किया होता और शांत भाव से साथ मिलकर पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बैठ गए होते तो परमेश्वर की महिमा होती। परंतु जो पूर्वाग्रह की भावना उस बैठक में लाई गई उसने परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष के द्वार बंद कर दिए, और जिनमें ये भावना थी वे तब तक प्रकाश देखने की अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे जब तक कि वे परमेश्वर के सामने पश्चाताप न करें और उन्हें कुछ एहसास न हो कि वे पवित्र आत्मा का अनादर करने और किसी दूसरी आत्मा को ग्रहण करने के कितने निकट आ पहुंचे थे। The 1888 Materials, 832.
1885 के बाद सिस्टर व्हाइट परमेश्वर की कलीसिया और कार्य के भविष्य को लेकर कांप उठी। उन्होंने देखा कि वो सभा लाओदीकियाई एडवेंटवाद के नेताओं के बीच लगातार आत्मिक युद्ध उत्पन्न करेगी, और द डेली का विवाद इस बात का प्रमाण है कि उनकी भविष्यवाणियां उसी पीढ़ी पर पूरी हुई। तब उन पुरुषों द्वारा युद्ध चलाया गया जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए संदेश और संदेशवाहकों की पुष्टि करने के लिए परमेश्वर ने जो प्रमाण दिए थे उनके आगे झुकना नहीं माना, और उन पुरुषों ने परमेश्वर का पवित्र आत्मा के विरुद्ध युद्ध किया। दूसरी पीढ़ी ने देखा कि परमेश्वर के न्याय की आग से प्रकाशन गृह और सेनेटोरियम जमीन तक जलकर राख हो गए।
आज मुझे एल्डर डैनियल्स का पत्र मिला जिसमें आग से रिव्यू कार्यालय के नष्ट हो जाने का उल्लेख था। इस कार्य को हुए भारी नुकसान के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख है। मुझे मालूम है कि कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे भाइयों और कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ये समय अत्यंत कठिन होगा। जो पीड़ित हैं उनकी पीड़ा में मैं सहभागी हूँ, परंतु ये दुखद समाचार मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगा, क्योंकि रात्रि के दर्शन में मैंने एक स्वर्गदूत को आग की तलवार लिए, जो बैटल क्रीक के ऊपर तनी हुई थी, खड़ा देखा है। एक बार दिन के समय जब कलम मेरे हाथ में थी, मुझे बेहोशी सी आ गई और ऐसा लगा मानो ये ज्वाला तलवार कभी एक दिशा में कभी दूसरी दिशा में घूम रही हो। विपत्ति पर विपत्ति आती हुई प्रतीत होती थी, क्योंकि मनुष्यों द्वारा स्वयं को ऊंचा उठाने और महिमा देने की योजनाओं से परमेश्वर का अपमान किया जा रहा था। आज सुबह मुझे गहन प्रार्थना करने की प्रेरणा मिली कि प्रभु रिव्यू एंड हेरल्ड कार्यालय से जुड़े सभी लोगों का मार्गदर्शन करें कि वे परिश्रम पूर्वक खोज करें, ताकि वे देख सकें कि किन बातों में उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिए गए अनेक संदेशों की उपेक्षा की है। कुछ समय पहले रिव्यू कार्यालय के भाइयों ने एक और भवन के निर्माण के विषय में मुझसे परामर्श मांगा। तब मैंने कहा कि यदि जो लोग रिव्यू एंड हेराल्ड कार्यालय में एक और इमारत जोड़ने के पक्ष में थे, उनके सामने भविष्य का नक्शा खुला होता, यदि वे देख सकते कि बैटल क्रीक में क्या होने वाला है, तो वहां एक और इमारत खड़ी करने को लेकर उनके मन में कोई प्रश्न न रहता। परमेश्वर ने कहा, मेरे वचन का तिरस्कार किया गया है और मैं उलट दूंगा और उलट पलट कर दूंगा। 1901 में बैटल क्रीक में आयोजित सामान्य सम्मेलन में प्रभु ने अपने लोगों को यह प्रमाण दिया कि वो सुधार का आह्वान कर रहे थे। मनो में दोषबोध जागा और हृदयों को स्पर्श किया गया, परंतु समुचित कार्य नहीं हुआ। यदि हठीले हृदय तब परमेश्वर के सामने पश्चाताप में टूट गए होते, तो परमेश्वर की सामर्थ्य के अब तक देखे गए सबसे बड़े प्रगटीकरणों में से एक देखा गया होता। परंतु परमेश्वर का आदर नहीं किया गया, उसकी आत्मा की गवाहियों पर ध्यान नहीं दिया गया, लोग उन आचरणों से अलग नहीं हुए जो सत्य और धर्म के सिद्धांतों के स्पष्ट विरोध में थे, जिन्हें प्रभु के कार्य में सदैव बनाए रखना चाहिए। इफिसस की कलीसिया और सार्दिस की कलीसिया के लिए जो संदेश है, उन्हें उस एक ने जो अपनी प्रजा के लिए मुझे निर्देश देता है, मुझे अक्सर दोहराकर सुनाया है। इफिसस की कलीसिया के दूत को लिखो, ये बातें वो कहता है जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे थामे हुए हैं और 7 सोने की दीवटों के बीच चलता है। मैं तेरे कामों, तेरे परिश्रम और तेरे धैर्य को जानता हूँ, और ये भी कि तू दुष्टों को सहन नहीं कर सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें तूने परखा और उन्हें झूठा पाया है, और तूने सहा है और धैर्य रखा है और मेरे नाम के लिए परिश्रम किया है और थका नहीं है। तो भी मुझे तेरे विरुद्ध ये है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले वाले काम कर, नहीं तो मैं शीघ्र तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा यदि तू मन न फिराए। प्रकाशित वाक्य 2:1-5। और सार्दिस की कलीसिया के दूत को लिख, ये बातें वो कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। मैं तेरे काम जानता हूँ कि तू जीवित कहलाता है परंतु मरा हुआ है, जागते रह और जो कुछ शेष है जो मरणासन्न है उसे दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे काम परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं पाए, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे पाया और सुना और उसे थामे रह और मन फिरा। यदि तू जागता न रहेगा तो मैं चोर के समान तुझ पर आ पड़ूंगा और तू न जानेगा कि किस घड़ी मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:3-3। हम इन चेतावनियों की पूर्ति देख रहे हैं। शास्त्रों के कथन कभी भी इनसे अधिक अक्षरशः पूरे नहीं हुए हैं। मनुष्य सबसे सावधानीपूर्वक निर्मित अग्निरोधक इमारतें खड़ी कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के हाथ का एक स्पर्श, स्वर्ग से एक चिंगारी हर शरण स्थान को मिटा देगी। ये पूछा गया है कि क्या मेरे पास देने के लिए कोई सलाह है। मैंने परमेश्वर से मिली सलाह पहले ही दे दी है, इस आशा से कि बैटल क्रीक के ऊपर लटक रही जलती हुई तलवार का गिरना रोका जा सके। अब जिसका मुझे भय था वो आ गया, रिव्यू एंड हेरल्ड भवन के जल जाने का समाचार। जब ये समाचार आया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। समय समय पर चेतावनी के रूप में जो बातें मुझे कहनी पड़ी उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, सिवाय इसके कि सुनने वाले और कठोर हो गए। और अब केवल इतना ही कहना है, मुझे बहुत खेद है, अत्यंत खेद है कि इस प्रहार का आना आवश्यक था। पर्याप्त प्रकाश दिया जा चुका है, यदि उस पर अमल किया गया होता तो आगे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। टेस्टिमोनीज, खंड 8, सत्यानव नन्नन्ना।
एडवेंटवाद की दूसरी पीढ़ी विजय नहीं थी और यहेजकेल अध्याय 8 की पूर्ति में विद्रोह केवल बढ़ता ही गया।
लिखित संदेशों और आग के माध्यम से प्रभु ने ये घोषित किया है कि वे चाहते हैं कि उनके लोग बैटल क्रीक से बाहर निकल जाएं। ईश्वर हमारी सहायता करें कि हम उनकी वाणी सुन सकें। क्या हमारे लिए इसका कुछ भी अर्थ नहीं कि बैटल क्रीक में हमारी दो महान संस्थाएं आग से हस्म हो गईं? आप कह सकते हैं, लेकिन नए सैनिटोरियम में बहुत से रोगी हैं। हाँ, लेकिन वहाँ यदि कई हजार रोगी भी हों तब भी ये हमारे लोगों के बैटल क्रीक में घर बनाकर बसने के पक्ष में कोई तर्क नहीं बनता। प्रलोभन बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य उस प्रकाश को अस्वीकार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा की गवाहियों के माध्यम से भेजा है, और वे अपने बनाए हुए उपायों और अपनी ही योजनाओं को चुन रहे हैं। क्या मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अलग होते रहेंगे? क्या उसे अपनी अप्रसन्नता को उससे भी अधिक स्पष्ट रीति से प्रकट करना होगा जितना वो पहले ही कर चुका है? पैम्फलेट्स, SPTB 06:45।
पुरुष अपने ही उपाय और अपने ही योजनाएं चुन रहे थे, जैसे साकी यहेजकेल अध्याय 8 के चित्रों से कक्षों में 70 बुजुर्गों द्वारा दर्शाया गया था, जो कहते थे, प्रभु हमें नहीं देखता। प्रभु ने एक भविष्यद्वक्त्री को उठाया और उसे ठीक 40 वर्षों तक, 1884 तक प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उसने इस वरदान पर अपनी मुहर लगाई, क्योंकि उसने इसे पोर्टलैंड नामक नगर में दिया और वही इसे समाप्त भी किया और इसे 40 वर्षों तक दिया। प्रत्यक्ष दर्शन के समाप्त होने से ठीक पहले 1881 और 1881 में बुजुर्ग पुरुषों ने बाइबल और भविष्यद्वाणी की आत्मा के अधिकार को कमजोर करना शुरू किया। तब प्रत्यक्ष दर्शन 1884 में समाप्त हो गए और 4 वर्ष बाद 1888 के जनरल कॉन्फ्रेंस में कोरा, दातान और अबीराम का विद्रोह दोहराया गया। 1888 के विद्रोह ने विद्रोह की तीव्रता को इस हद तक बढ़ा दिया कि लाओदीकियन एडवेंटिज्म के इतिहास में स्वयं परमेश्वर का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप दिखाई दिया जब उसने प्रकाशन कार्य और स्वास्थ्य कार्य को जला दिया। फिर भी वे प्रत्यक्ष न्याय उस चल रहे विद्रोह को रोक नहीं पाए। 1919 में एक बाइबल सम्मेलन हुआ जहां दूसरी पीढ़ी के प्रमुख विद्रोहियों में से एक विलियम वॉरेन प्रेस्कॉट, जो धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित एक धर्मशास्त्री था, ने उस शैतानी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई, जो ये दावा करता था कि द डेली मसीह के पवित्र स्थान के कार्य का प्रतीक है। इस विषय पर उसने प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला दी। इतिहास बताता है कि 1919 के उस बाइबल सम्मेलन में प्रेस्कॉट ने ऐसा सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसमें मिलराइट्स के भविष्यवाणी संदेश के हर सिद्धांत को हटा दिया गया था। उसने 2300 दिनों को भी हटाने का प्रयास किया, पर वह ऐसा कर नहीं सका। फिर भी उसने ऐसा सुसमाचार प्रस्तुत किया जो मिलराइट्स की भविष्यवाणी संबंधी समझ से पूरी तरह रहित था। उसके सुसमाचार को उस बैठक में अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी उन अंधे नेताओं ने उसकी प्रस्तुतियों की श्रृंखला को लेकर उन्हें एक पुस्तक का रूप देने और उसका शीर्षक द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट रखने का निर्णय लिया। वो पुस्तक लाओदिकियाई एडवेंटिज्म की तीसरी पीढ़ी के आगमन का प्रतीक बन गई। ये पुस्तक हबक्कुक के दूसरे अध्याय वाले मिलराइट सुसमाचार से अलग एक और सुसमाचार प्रस्तुत करती है, और पॉलुस हमें बताता है कि कोई दूसरा सुसमाचार सुसमाचार है ही नहीं।
मैं आश्चर्य करता हूँ कि तुम इतने शीघ्र उससे हटकर, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, किसी और सुसमाचार की ओर मुड़ गए हो, जो वास्तव में दूसरा नहीं है, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें भ्रमित करते हैं और मसीह के सुसमाचार को विकृत करना चाहते हैं। परंतु यदि हम ही या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार के सिवाय जो हमने तुम्हें सुनाया है तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वो शापित ठहरे। जैसा हमने पहले कहा था, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं, यदि कोई मनुष्य उस सुसमाचार के सिवाय जिसे तुमने ग्रहण किया है तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वो शापित ठहरे। गलातियों 1:6-9।
एडवेंटिज्म की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व यही स्केल में वर्णित तीसरे घृणित कर्म से होता है, जहां स्त्रियां तमूज के लिए रोती हैं। तमूज एक मेसोपोटामियाई देवता था जो उर्वरता और वनस्पति के चक्रों से जुड़ा था। तमूज को कभी कभी एक चरवाहे या एक युवा पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता था, और वो बदलती ऋतुओं तथा फसलों की वृद्धि से संबंधित था। तमूज की मृत्यु और उसके बाद का पुनरुत्थान कृषि कैलेंडर से जुड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तमूज गर्मियों के महीनों में मर जाता था या लुप्त हो जाता था। इसे उष्ण शुष्क ऋतु में वनस्पति के मुरझाने का प्रतीक माना जाता था। तमूज के लिए रोना एक शोक संबंधी अनुष्ठान था, जिसमें गर्मियों के महीनों में तमूज की मृत्यु या लुप्त हो जाने पर विलाप किया जाता था और उसके पुनरुत्थान पर आनंद मनाया जाता था, जो वनस्पति और कृषि जीवन के नवीनीकरण का प्रतीक था। तमूज के लिए विलाप एक नकली उत्तर वर्षा संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि WW प्रेसकॉट के सुसमाचार ने प्रस्तुत किया था। भविष्यवाणी के आधार को हटाना, जिसकी शुरुआत 1863 के विद्रोह में हुई थी, 1919 में इस बिंदु तक पहुंच गया कि लाओदीकियाई एडवेंटवाद ने झूठे सुसमाचार को स्थापित होने दिया। वो झूठा सुसमाचार पूरी तरह धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की पद्धति पर आधारित था। उसका मूल वास्तुकार WW प्रेसकॉट था, और विलियम मिलर की ही तरह दोनों पुरुषों का सुसमाचार दानियल की पुस्तक में प्रतिदिन के विषय में उनकी बुनियादी समझ पर आधारित था। दोनों सुसमाचार 2 थिस्लुनीकियों के उस पाठ्यांश में निरूपित है, जहां मिलर ने सबसे पहले ये खोजा कि प्रतिदिन मूर्ति पूजा का प्रतिनिधित्व करता था। उस पाठ्यांश में एक वर्ग मिलर द्वारा निरूपित है, जो पॉलुस द्वारा प्रस्तुत सत्य को स्वीकार करता है, और दूसरा वर्ग वो है जिसके पास सत्य के प्रति प्रेम नहीं है। अंतिम दिनों में एक वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व मिलर द्वारा किया गया है पहचानता है और अंतिम वर्षा प्राप्त करता है, और दूसरा वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व प्रेसकॉट द्वारा किया गया है प्रबल भ्रम प्राप्त करता है। जो प्रबल भ्रम वे प्राप्त करते हैं वो एक झूठे सुसमाचार पर आधारित है, जो सुसमाचार है ही नहीं, और वो अंतिम वर्षा के एक झूठे संदेश की पहचान करता है। अतः यह जकेल की तीसरी घृणित बात यह है, स्त्रियां लाओदिकियन एडवेंटिज्म की कलीसियाएं तमूज के लिए रो रही हैं। उनके ग्रीक खलालीन आंसू वर्षा कटनी का फल उत्पन्न करने के लिए है। अंतिम वर्षा के दो प्रकार के संदेशों के बीच का भेद बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा में सर्वत्र दिखाई देता है। बाइबल बार बार बताती है कि अवज्ञाकारी लोगों से वर्षा रोक ली जाती है।
वे कहते हैं, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ दे और वो उससे चली जाए और किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो क्या वो फिर उसके पास लौटेगा? क्या वो देश बहुत अपवित्र न हो जाएगा? परंतु तूने तो बहुत से प्रेमियों के साथ वेश्या का काम किया है, तो भी मेरे पास फिर लौटा, प्रभु की ये वाणी है। अपनी आंखें ऊंचे स्थानों की ओर उठा और देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तेरे साथ सहवास न किया गया हो। मार्गों में तू उनके लिए घात लगाकर बैठी रही, जैसे मरुभूमि में कोई अरबवासी, और तूने अपने व्यभिचारों और अपनी दुष्टता से देश को अपवित्र कर दिया है। इसलिए बरसातें रोक दी गई हैं और बाद की वर्षा नहीं हुई है, और तेरा माथा वेश्या जैसा निर्लज्ज था, तू लज्जित होना नहीं चाहती थी। यिर्मयाह 3:1-3।
लाओदीकियाई एडवेंटिज्म 1836 में व्यभिचार करने लगा और तब से वर्षा रोक दी गई है। वे अपने विद्रोह पर लज्जित होने से इनकार करते हैं और नम्रता का अभाव उन्हें वेश्या का ललाट देता है, और बाइबल की भविष्यवाणी की वेश्या पापाई सत्ता है। तीसरी पीढ़ी वही है जहां रोम की वेश्या के चिन्ह के आगे झुकने की तैयारी का अंतिम कार्य पूरा होता है। चौथी पीढ़ी की तैयारी तीसरी पीढ़ी में अंतिम वर्षा के एक नकली संदेश द्वारा पूरी की जाती है। 1836 का विद्रोह, 1823 का विद्रोह और 1919 का विद्रोह 11 सितंबर 21 के साथ संरेखित है, क्योंकि जब उस समय न्यूयॉर्क सिटी की इमारतें ढह गईं, तब प्रकाशित वाक्य 18 का शक्तिशाली स्वर्गदूत उतर आया और सच्ची अंतिम वर्षा आरंभ हुई।
पिछली वर्षा परमेश्वर की प्रजा पर बरसनी है। एक सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरने वाला है और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो जाएगी। रिव्यू एंड हेरल्ड, April 21, 1890।
जब उत्तरकालीन वर्षा आरंभ हुई तो लाओदीकियाई एडवेंटिज्म के प्राचीन उसे उत्तरकालीन वर्षा के रूप में नहीं पहचानते थे, क्योंकि उन्हें उत्तरकालीन वर्षा के एक झूठे संदेश की शिक्षा दी गई थी, जिसे यही जी के लिए तम्मूज के लिए विलाप करती स्त्रियां के रूप में दर्शाया है और अनुप्रयोग में शांति और सुरक्षा के संदेश के रूप में।
केवल वे ही जो अपने पास के प्रकाश के अनुरूप जीवन जीते हैं और अधिक प्रकाश प्राप्त करेंगे। जब तक हम सक्रिय ईसाई सद्गुणों के आचरण में प्रतिदिन प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम अंतिम वर्षा में पवित्र आत्मा की अभिव्यक्तियों को पहचान नहीं पाएंगे। संभव है कि वो हमारे चारों ओर के हृदयों पर बरस रही हो, परंतु हम न तो उसे पहचानेंगे और न ही उसे ग्रहण करेंगे। टेस्टिमनीज टू मिनिस्टर्स 5-7।
जनता के अभिभावकों के लिए अंतिम वर्षा के आगमन को पहचानना असंभव था, क्योंकि झूठी अंतिम वर्षा के उनके झूठे सुसमाचार ने परमेश्वर की शक्ति के उस तरह के किसी भी प्रकटीकरण की संभावना से, जैसा कि पूर्व युगों में हुआ था, इनकार कर दिया था।
कलीसियाओं में परमेश्वर की शक्ति का एक अद्भुत अब्द प्रकटीकरण होने वाला है, परंतु ये उन पर प्रभाव नहीं डालेगा जिन्होंने प्रभु के सामने अपने आप को दीन नहीं किया और अंगीकार तथा पश्चाताप के द्वारा हृदय का द्वार नहीं खोला। उस शक्ति के प्रकटीकरण में जो परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी को आलोकित करती है, वे केवल वही कुछ देखेंगे जिसे वे अपनी अंधता में खतरनाक समझते हैं, ऐसा कुछ जो उनके भय को भड़काएगा और वे उसे प्रतिरोध करने के लिए अपने आप को दृढ़ कर लेंगे। क्योंकि प्रभु उनकी धारणाओं और अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करता, वे उस कार्य का विरोध करेंगे। क्यों? वे कहते हैं, जब हम इतने वर्षों से इस काम में हैं तो हमें परमेश्वर की आत्मा को क्यों न जानना चाहिए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदेशों की चेतावनियों और विनतियों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु लगातार कहते रहे, मैं धनी हूँ और माल से समृद्ध हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। प्रतिभा और दीर्घ अनुभव मनुष्यों को ज्योति के माध्यम नहीं बनाते जब तक कि वे अपने आप को धार्मिकता के सूर्य की उज्ज्वल किरणों के नीचे न रखें और पवित्र आत्मा के वरदान से बुलाए, चुन लिए और तैयार न किए जाएं। जब वे मनुष्य जो पवित्र वस्तुओं को संभालते हैं परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे अपने आप को दीन करेंगे, तब प्रभु उन्हें ऊंचा उठाएगा। वो उन्हें विवेकशील मनुष्य बनाएगा, ऐसे मनुष्य जो उसकी आत्मा के अनुग्रह में धनी हों। उनके स्वभाव के प्रबल स्वार्थी गुण और उनकी हठधर्मिता जगत की ज्योति से निकलने वाले प्रकाश में प्रकट हो जाएंगे। मैं शीघ्र तेरे पास आकर तेरा दीवट उसके स्थान से हटा दूंगा यदि तू मन न फिराए। यदि तुम सारे मन से प्रभु को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, 23 दिसंबर 1890।
यहेजकेल अध्याय 8 के बुजुर्गों ने 1919 में शांति सालिक सेलिक तोमार और सुरक्षा के सुसमाचार को स्वीकार किया, और जब 11 सितंबर 2001 आया तो उस बढ़ती हुई बगावत का फल उनकी अंतिम वर्षा के आगमन को पहचानने में असमर्थता में प्रकट हुआ। 1988 में अंत के इतिहास से शुरू होने वाले उनके इतिहास में परमेश्वर ने मिलर राइट आंदोलन को अक्षरशः दोहरा दिया। मिलर एलिया का प्रतीक था और एलिया ने आहाब से सख्ती से कह दिया था कि एलिया के वचन के सिवा वर्षा नहीं होगी। हम अगले लेख में एडवेंटिज्म की तीसरी पीढ़ी पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वह वर्ग जो अपने ही आध्यात्मिक पतन पर शोकित नहीं होता और न दूसरों के पापों पर विलाप करता है, उसे परमेश्वर की मुहर के बिना छोड़ दिया जाएगा। प्रभु अपने दूतों को, जिनके हाथों में वध के हथियार है, आदेश देता है, नगर में उसके पीछे पीछे जाओ और मारो। तुम्हारी आंख न दया करे, न तुम तरस खाओ। बूढ़ों और जवानों, कुंबारियों, छोटे बच्चों और स्त्रियों, सबको पूरी तरह मार डालो। पर जिस किसी मनुष्य पर चिन्ह हो, उसके समीप न जाना और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करना। तब उन्होंने उन बुजुर्ग पुरुषों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। यहाँ हम देखते हैं कि कलीसिया, प्रभु का पवित्र स्थान, सबसे पहले परमेश्वर के कोप का प्रहार महसूस करने वाली बनी। वे बुजुर्ग पुरुष जिन्हें परमेश्वर ने महान प्रकाश और जो लोगों के आध्यात्मिक हितों के रक्षक के रूप में खड़े रहे थे, अपने दायित्व के साथ विश्वासघात कर चुके थे। उन्होंने ये धारणा बना ली थी कि जैसे पूर्व दिनों में होता था, वैसे चमत्कारों और परमेश्वर की शक्ति के स्पष्ट प्रकटीकरण को हमें अब खोजने की आवश्यकता नहीं है। समय बदल गया है। ये बातें उनके अविश्वास को और दृढ़ करती हैं और वे कहते हैं, प्रभु न तो भलाई करेगा और न ही बुराई करेगा। वो इतना दयालु है कि अपने लोगों पर न्याय करने नहीं आएगा। इस प्रकार शांति और सुरक्षा की पुकार उन लोगों की ओर से उठती है जो फिर कभी अपनी आवाज को नरसिंगी की तरह नहीं उठाएंगे, ताकि परमेश्वर के लोगों को उनके अपराध और याकूब के घराने को उनके पाप दिखाएं। ये गूंगे कुत्ते जो भौंकते नहीं, वही रुष्ट परमेश्वर के न्यायोचित प्रतिशोध को झेलते हैं। पुरुष, कन्याएं और छोटे बच्चे सब साथ साथ नाश हो जाते हैं। जिन घृणित कार्यों के कारण विश्वास योग्य लोग आहें भरते और रोते थे, वे तो मात्र वे ही थे जिन्हें मानवीय सीमित आंखें देख सकती थीं, परंतु सबसे घोर पाप वे जो शुद्ध और पवित्र परमेश्वर की ईर्ष्या को भड़काते थे प्रकट नहीं हुए थे। हृदयों का महान परखने वाला अधर्म करने वालों द्वारा गुप्त में किए गए हर पाप को जानता है। ये लोग अपनी छल कपट में अपने को सुरक्षित समझने लगते हैं और उसकी दीर्घ सहनशीलता के कारण कहते हैं कि प्रभु देखता नहीं, और फिर ऐसे आचरण करते हैं मानो उसने पृथ्वी को त्याग दिया हो। परंतु वो उनकी कपटता को पकड़ लेगा और जिन पापों को वे बड़े जतन से छिपाते रहे, उन्हें वो दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। पद, गरिमा या सांसारिक बुद्धि की कोई श्रेष्ठता पवित्र पद पर किसी भी स्थिति के बावजूद मनुष्यों को तब सिद्धांतों की बलि देने से नहीं रोक सकती जब उन्हें उनके अपने छलपूर्ण हृदयों पर छोड़ दिया जाता है। जिन्हें योग्य और धर्मी माना गया है, वही धर्म त्याग के अगुवे सिद्ध होते हैं और उदासीनता तथा परमेश्वर की दयाओं के दुरुपयोग में उदाहरण बनते हैं। उनके दुष्ट आचरण को वह अब और सहन नहीं करेगा और अपने क्रोध में वह उनसे बिना दया किए निपटता है। प्रभु बड़ी अनिच्छा से अपनी उपस्थिति उनसे वापस ले लेते हैं जिन्हें महान ज्योति का आशीर्वाद मिला है और जिन्होंने दूसरों की सेवा करते हुए वचन की शक्ति का अनुभव किया है। वे कभी उसके विश्वास योग्य सेवक थे, उसकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से अनुग्रहित, परंतु वे उससे दूर हो गए और दूसरों को गुमराह कर दिया, और इसलिए वे ईश्वरीय अप्रसन्नता के अधीन कर दिए जाते हैं। साक्ष्य, खंड 5, 211-200।